नमस्कार। कोरोना महामारी से मुकाबला जारी है। यह महामारी हर दिन नई चुनौती सामने खड़ी कर रही है। बेड, दवाई, ऑक्सीजन, बड़े शहरों की तो खबरें जल्दी मिल जाती हैं, तो प्रशासन और सिस्टम का ध्यान भी उन पर जल्दी चला जाता है और समस्या दूर करने के लिए जल्दी कदम उठाए जाते हैं। लेकिन हमारे छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों से तस्वीरें जब आती हैं तो झकझोर कर रख देती हैं। कल ही उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक तस्वीर आई जिसने मन को व्यथित कर दिया। बीच सड़क में एक बेहाल बुजुर्ग पति साइकिल में लटकी पत्नी को संभाल भी नहीं पा रहा था, वो जमीन पर गिर पड़ी। कोरोना से मौत हो गई थी और कोई गांव वाला ना अंतिम संस्कार करने दे रहा था, मदद तो दूर की बात है। वो काफी देर तक भटकता रहा, फिर बाद में पुलिस आई, उसने मदद की और पत्नी का अंतिम संस्कार हो सका। यहाँ तो इंसानियत ही शर्मसार हुई। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर आई कि बुजुर्ग महिला को मृत घोषित कर दिया गया। परिजन जब अंतिम संस्कार के लिए गए तो उसे जीवित पाया। हड़बड़ी में एम्बुलेंस आई, अस्पताल भेजा गया, लेकिन उन्हें वहां बचाया नहीं जा सका। तो स्वास्थ्य सेवाओं का जर्जर हाल बार बार हमारे सामने आकर खड़ा हो रहा है। बहरहाल सरकार ने भी हमारे जिलों पर आज एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार देश के 400 जिले ऐसे हैं जहां हफ्ते भर में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। 265 जिलों में 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। जिलों में कंटेनमेंट जोन बनाने के सुझाव दिए गए हैं। जहां संक्रमण दर 15% से ज्यादा है वो राज्य हैं मध्य प्रदेश के 45 जिले, महाराष्ट्र के 32 जिले, उत्तर प्रदेश के 24 जिले, छत्तीसगढ़ के 21 जिले, हरियाणा के 18 जिले, पश्चिम बंगाल के 16 जिले, बिहार कर्नाटक के 14 जिले, उड़ीसा के 13 जिले, दिल्ली और झारखंड के 11 जिले। तो जब जमीनी हकीकत खराब हो रही है तो जिला स्तर पर सरकारें क्यों सोई हुई सी लगती हैं? आज ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान शिक्षिका की तबीयत बिगड़ गई। उसने वीडियो जारी कर बताया कि ना घर जाने दे रहे हैं, ना इलाज करा रहे हैं, मेरे घर में बीमार हैं। इनका नाम अपर्णा है। उन्होंने बताया कि पति की तबीयत भी खराब है, टेस्ट कराए, रिपोर्ट अभी आई नहीं है, घर में छोटे बच्चे हैं, लेकिन उन्हें चुनाव ड्यूटी में भेजा गया। अगर किसी भी तरह कोई कैजुअल्टी होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? टीचर को ये लोग क्या समझते हैं? कृपा करके हेल्प कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान 135 शिक्षकों की कोरोना से मौत हो गई। उनकी चुनाव टालने की मांग तो सरकार ने नहीं मानी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर राज्य चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। तो सवाल यही है कि हम चुनावी प्रक्रिया में क्या सब भूल जाते हैं। और आज ही अभी कुछ देर पहले पश्चिम बंगाल से खबर आई है कि संक्रमण के मामले पहली बार 17,403 को पार कर गए हैं। मौत का आंकड़ा भी पहली बार 89 पहुंचा है। तो क्या चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या कोरोना का डर इतना कि इंसानियत भी लापता सी हो गई है इस दौर में? हमारे देश के बड़े शहर ही नहीं, जिला स्तर भी हालत वहां पे हालात ठीक नहीं है। क्या रणनीति है इस चुनौती से पार करने के लिए? तो हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर अमरपाल भल्ला, प्रोफेसर HOD इंटेंसिव केयर KD मेडिकल कॉलेज मथुरा। हमारे साथ विक्रम सिंह हैं, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश हमारे साथ हैं। सुनील भराला जी भी हमारे साथ जुड़ गए, धन्यवाद सर, BJP के वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश से। लेकिन पहले मैं अपनी सहयोगी पूर्वा चिटनिस के पास चलूंगी। वो मुंबई में रहती हैं लेकिन अब वो रिपोर्टिंग के लिए गुजरात गई हुई हैं, सूरत में मौजूद हैं। और अभी मैं बुलेटिन से पहले पूर्वा का एक ट्वीट पढ़ रही थी, उसमें पूर्वा ने एक हताशा अपनी जाहिर की। उसने कहा है कि जो मौत का प्रमाण पत्र है उसमें कोविड मौत नहीं लिखी जा रही है। पूर्व आप लगातार आपकी रिपोर्ट्स चल रही हैं, किस तरह से जमीनी हालात हैं सूरत में, किस तरह से लगातार शमशान ग्रहों में इतना वहां पे संख्या में शवदाह हो रहे हैं कि एक जगह तो कुरुक्षेत्र जो शमशान निवास था वहां पे तो जो चिमनी थी वो पिघल गई। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो मृत्यु प्रमाण पत्र पे कोरोना नहीं लिखा जा रहा, क्या कारण है, क्या हालत है वहां पर?
देखिए, अगर हालात की बात करें तो जमीनी स्तर पर जो सरकार के आंकड़े आ रहे हैं, जो सरकार का बुलेटिन आता है वहां पे जो मृत्यु का आंकड़ा आता है हर रोज, तो सूरत का हर रोज का मृत्यु का आंकड़ा मैं पिछले 5-6 दिनों से लगातार उसको देख रही हूँ, और मृत्यु का आंकड़ा जो सरकार बता रहे हैं वो 20, 22, 23 ऐसे है। और इसी के लिए हमने मृत्यु जो शमशान घाट है वहाँ पे जाके हमने खुद अपने ओर से थोड़ी रियलिटी चेक करने की कोशिश की, और वहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो 1 घंटे 1.5 घंटे जो हम वहाँ पे थे, हमने खुद ने 10 कोविड बॉडीज वहाँ पे आई थी वो खुद से गिने थे। उसके बाद हमने ग्राउंड स्टाफ से भी जब बात की, ग्राउंड स्टाफ का भी ये कहना है कि एक शमशान गृह में करीब 50 से ज़्यादा बॉडीज आती रहती है, लेकिन जो रजिस्ट्री होती है वो रजिस्ट्री जो कोविड की डेड बॉडीज की रजिस्ट्री होती है, जो कॉरपोरेशन के तौर पर जो रजिस्ट्री होती है वो की तो जाती है, लेकिन जब वो कॉरपोरेशन की ओर से जब वो आंकड़ा फाइनली जो सरकार को दिया जाता है, राज्य सरकार को दिया जाता है, उसमें जो जो मृत्यु कोमॉर्बिडिटीज से हुई है, मतलब जिनको हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो, उससे शायद उनकी मौत हुई हो, तो ऐसे कारण लिखे जा रहे हैं, और जो कोविड का जो मृत्यु का कारण है वो हर जगह पे नहीं लिखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आंकड़े जो है जो सरकार की ओर से बयां किया जा रहे हैं, और जो जमीनी स्तर पर जो आंकड़े जो है, जो जमीनी स्तर पर जो शव को जो क्रीमेट हो रहे हैं उसमें काफी ज्यादा अंतर है, और ये अंतर सिर्फ स्मशान घरों में नहीं है बल्कि जो अगर हम बरियल ग्राउंड्स में जाए तो वहां पे भी काफी मौतें होती है। तो वो सारे आंकड़े मिला के सूरत में कम से कम दिन के 100 से ज्यादा मृत्यु हो रहे हैं, लेकिन वो आंकड़े जो सरकार का बुलेटिन आता है उसमें लिखे नहीं जाते हैं।
बिल्कुल पूर्वा, आपने ये जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप वहां पहुंची हुई, अपना भी ध्यान रखें। तो हमारे साथ खास मेहमान है सुनील भराला, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, साथ ही डॉक्टर अमरपाल भल्ला भी हैं, और वरिष्ठ चिकित्सक मैं देख सकती हूं, और विक्रम सिंह जी तो बने हुए हैं। तो डॉक्टर भल्ला, मैं पहले आप ही के पास आऊंगी। सर भराला जी हमारे साथ अभी नहीं है, मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी भी एक्सेप्टेंस कि ये कोरोना महामारी के हम दौर से गुजर रहे हैं, हमारे मरीज इससे मर सकते हैं, क्या इसको हिचकिचाहट क्यों है इसकी एक्सेप्टेंस में?
ये आपकी गलत धारणा है, एक्सेप्टेंस बिल्कुल है, और पूरे सरकार ने सब एक्सेप्ट किया है कि कोरोना से लोग मर सकते हैं और मर रहे हैं, और ये एक्सेप्टेंस बिल्कुल है। और ये जो आपने अभी मेंशन किया, आपके रिपोर्टर ने, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दीज आर कोमॉर्बिडिटीज, और इनके कारण होती है मौत, तो सर्टिफिकेट में मेंशन किया जाता है कि कोविड भी है और डायबिटीज भी है और ब्लड प्रेशर भी है, बिकॉज इन बीमारियों से कोविड की मोर्टैलिटी बढ़ती है। तो ये कहना गलत है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस है तभी तो सरकार इतने कदम उठा रही है। माना कि ऑक्सीजन की कमी है, और हमारे हॉस्पिटल में हम लोगों को एक पिछले हफ्ते प्रॉब्लम आई थी, पर अब वो सही कर दी गई है और हमारे पास ऑक्सीजन रेगुलर आ रही है। तो आपको ये समझना, सबको समझना पड़ेगा कि थोड़ी सी घबराहट मत फैलाएं, आम जनता में जो दहशत का फैलाया गया है वो सही नहीं है, और एक्सेप्टेंस है और सरकार इसके कदम उठा रही है।
घबराहट फैलाने की बात नहीं है, ना कुछ भ्रम फैलाने की बात है। अगर एक डॉक्टर यहाँ पे बैठे हैं, हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि अगर होती है मृत्यु तो उसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बीमारी है, बीमारी का इलाज होगा, है कि नहीं? अगर आप शमशान घाटों में जाके देखेंगे जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करने लगेंगे तभी समस्या का निवारण होगा। विक्रम सिंह आप हमारे साथ सब मौजूद हैं, वो मैं तस्वीर फिर से चलाना चाहूंगी जो हमने आज शुरुआत में जौनपुर की चलाई थी। सर अंत में हमने देखा जिस तरह से एक व्यक्ति था, बुजुर्ग था, उसकी पत्नी की कोरोना से मौत हो जाती है, गांव वाले अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं दे रहे थे वहां पे, वो भी डरे हुए थे क्योंकि भय है उनमें, और उसके बाद मदद भी नहीं कर पा रहे थे। बाद में जो पुलिस थी वो ही आई, जब वो भटकता रहा, बहुत घंटों इंतजार किया, पुलिस आई और पुलिस ने मदद की, तो अंत में पुलिस ही मददगार साबित होती है और वो हुई वहां पर। हमारी पुलिस व्यवस्था पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, दबाव है इस दौरान, क्या आकलन आपका?
निधि जी, सदैव की भांति आपने मानवीय संवेदना से संबंधित कोई भी प्रश्न हो उसको आपने पूरी सहृदयता के साथ उठाया, इसके लिए आपको साधुवाद। ये किसी की भी अंतरात्मा को झकझोर देगा। और पुलिस एक सही है कि एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में आती है, और कहां क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, और कहां लाशों के संबंध में उनका अंतिम संस्कार करना। पुलिसकर्मी कभी पीछे नहीं रही है। लेकिन एक चीज होती है निधि जी, पैंडेमिक फटीग, वो आपको भी हो रहा है, पुलिसकर्मियों को भी हो रहा है, सबको हो रहा है जिन्होंने इस महामारी का सामना किया है। कालांतर में पैंडेमिक फटीग सेट इन होता है। पुलिस बल बहुत अच्छा काम कर रहे 24/7, लेकिन शरीर के कुछ गुणधर्म होते हैं, उनको विश्राम, नींद और टॉनिक्स और फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। मुझे कहने में कोई संदेह नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यक छुट्टी न मिलना, नींद का पूरा न होना, कार का इतना बढ़ जाना कि एक एक कर्मचारी 18-18 घंटे काम कर रहा है, 4 घंटे नींद ले रहा है, तो उसका इम्पैक्ट शरीर, मन, मस्तिष्क पे और कार्यक्षमता पे पड़ता ही पड़ता है। और सभी भी पढ़, जो भी कोरोना वॉरियर्स उनके पढ़ ही रहा है। लेकिन मैं उनको सलाम करते हुए कहूंगा कि पुलिस को अपना समझते हुए, अगर इस बुजुर्ग से तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि इस त्रासदी के बाद वो संपर्क करता, लेकिन ग्राम प्रधान, विलेज चौकीदार और लाइसेंस दारान ऐसे उनके माध्यम से पुलिस तक पहुंचा जा सकता है।
लेकिन एक भय है लोगों में। अब जिस तरह से ये तस्वीर है, अगर हम गांव वालों की तरफ से सोचे तो उनमें एक भय है, आप उसे अज्ञानता कह सकते हैं, उपचार के साधनों की कमी कह सकते हैं। अभी जिस तरह से पूर्वा भी हमें बता रही थी, एक तरह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हम कि ये तरह की स्थिति है जिससे हमें इसका समस्या का निवारण करना है। उस लिहाज से जो जमीन पर जो उतरे लोग होते हैं, चाहे तो वो डॉक्टर्स ही होते हैं, नर्सेज ही होते हैं, पुलिस वाले ही होते हैं जो सबसे पहले मदद के लिए आते हैं, तो किस तरह से उनको और अवेयर किया जा सकता है गांव वालों को, जिस तरह से यहां पे किया गया होगा बाद में।
मैं जवाब दूं इसका क्या?
निधि जी, ये पुलिस का काम, डॉक्टर्स का काम, स्वयंसेवी संगठन एनजीओ का काम है। काम आसान नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा कि कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स हो, पुलिसकर्मी हो, उनके ऊपर आक्रमण हुए, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हम आक्रमण करेंगे तो हम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी चला रहे हैं। लेकिन ये काम बिल्कुल परफेक्ट डूएबल है। ऐसा नहीं जैसा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने अगरतला में किया, वो कोई तरीका नहीं जनता को विश्वास में लेना। जनता को विश्वास में लेने के लिए पहले एक कदम सौहार्दपूर्ण तरीके से विश्वास में लेकर के और शालीनता के साथ, और जहां हम समझते हैं लाठी के बल पे ये काम होने वाले नहीं है, न लाठी का यहां कोई इस्तेमाल है, यहां मित्र के रूप में आगे बढ़ करके, अपना समझ करके, अपने परिवार समझ करके, विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके उनको अगर हम अवेयर करेंगे तो काम बिल्कुल आसान है। और जहां पर लोगों ने किया है, एसपी अमेठी ने किया है, इसी तरह एसएसपी मेरठ ने किया है, कई जगह बड़े इसके अच्छे उदाहरण है। लेकिन जो कल अगरतला में डीएम ने किया वो एक अच्छा तरीका नहीं है कोविड महामारी में।
आज तो मैंने और भी दृश्य देखे कि पुलिस वाले खुद अपना इंतजाम अपने लिए, जो पुलिस लाइंस होती है वहीं पे इंतजाम कर रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा पुलिस वाले जो घंटों ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको वहां पे विश्राम कर सके, या कोरोना से अगर संक्रमित है तो उनका उपचार हो सके, सहारनपुर से खबर आई थी। बराला जी, आप हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। बराला जी, आज यूपी से खबर आई, आपने देखा, वो शिक्षक अपर्णा थी, चुनाव ड्यूटी पर थी, सरकार ने वो वीडियो भी देखा होगा, क्या आप लोग देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, ये वीडियो क्यों जारी करना पड़ा होगा उस शिक्षिका को, अगर वो विजुअल्स हम चला सके जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में चलाए थे। जी
देखिए निधि, ऐसा है कि ये आपदा, और आपदा बहुत भयानक रूप है इसका, इस समय इस पर सरकार और जितने भी कोरोना योद्धा लड़ रहे हैं वो सबकी बड़ी हिम्मत की बात है। लेकिन उसके बाद में भी जो बहुत सारे ऐसी जो ट्रेजेडी हो रही है, जो बिल्कुल भयावह स्थिति बन रही है, या फिर मरीज के साथ उसके परिवार के साथ इस प्रकार की घटना घटती है तो वो पीड़ादायक तो होती है, और उस पीड़ा को सामने उसके बहुत सारे ऐसे रास्ते भी हैं कि जो कोई किसी के पास रास्ता कोई निकलता नहीं है, कि उसमें डॉक्टर्स भी क्या करें। कई बार इतनी हताशा है कि जो आप देख रहे होंगे चिकित्सालयों में, मैं मेरठ में खुद देख रहा हूं कि गैस का वितरण करने के लिए कितना कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि 75% लोग अपने घरों में एकांत में रुके हुए हैं जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग अस्पतालों में हैं, जहां ऐसे अस्पताल है जहां कोविड के अस्पताल है, और आप देखिए कि एकदम हर जगह, डबल नहीं मैं कह रहा हूं ट्रिपल ट्रिपल चीजों की आवश्यकता पड़ रही है, दवाई की आवश्यकता पड़ रही है, गैस की आवश्यकता, ऑक्सीजन की पड़ रही है। तो तो ऐसे में जब मांग बढ़ रही है तो चारों तरफा से एक ऐसा खौफ है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि लोग बहुत धैर्य से काम लें इसमें
बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि धैर्य से काम लें। आज ही गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की और गृह मंत्रालय ने बताया कि किस तरह से हमारे 400 जिले ऐसे हैं जहां पे पॉजिटिविटी रेट 15% 400 के करीब ऐसे जो हमारे जिले हैं वहां पर जो पॉजिटिविटी रेट एक हफ्ते में 10% से हो गई है बढ़ गई है। 15% ऐसे जहां पे संक्रमण वाले जिले हैं वो 400 के करीब हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूं अगर गृह मंत्रालय हमारे दूर दराज के इलाकों का आंकलन कर रहा है तो क्या राज्य सरकारों को इसके बारे में जानकारी है, क्योंकि अभी आप देखिए यूपी में किस तरह से अब चुनाव की ड्यूटी पे उस शिक्षिका को लगाया गया, वो संक्रमित थी, उसके घर में भी लोग संक्रमित थे, बावजूद इसके वो चुनावी ड्यूटी पे लगाई गई। और हमारे सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट है कि 135 टीचर्स इस चुनावी ड्यूटी में उनकी जान गई है, तो क्या आंकलन है सरकार को इस बारे में कि क्या राय है सर सरकार की?
देखिए सरकार को पूरी जानकारी है, सरकार ऐसा नहीं है, सरकार ने पूरा नियम बनाया है जो कोविड की ड्यूटी पर जाएगा उसकी कोरोना की रिपोर्ट आएगी, उसकी आरटीपीसी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उसको ड्यूटी पर जाने देंगे। ऐसा नहीं है कि कोरोना मरीज को ड्यूटी पर लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कहीं से अपवाद हो गया, कोई बात हो गई, या तो ऐसी स्थिति बनी है कि वो ड्यूटी पे जाने के बाद में पॉजिटिव हो गई है, ऐसा हो सकता है उसके साथ, या वो अपनी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर पाई है, तो एक ऐसी बात भी हो सकती है। हम आपकी रिपोर्ट को ये नहीं कह रहे कि आपके पास कहीं से झूठी रिपोर्ट आई है, लेकिन हो सकता है उसमें कहीं कंफ्यूजन हुआ हो, लेकिन सरकार इतनी मतलब सजिंदा से उसको रख रही है और इतना ध्यान रख रही है हर चीज को। आप देखिए कि जो अजीत के रूप में भी जो पोलिंग पर जाने वाले हैं सबको निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा, चाहे वो एजेंट चाहे खाली रह जाए एक प्रकार को, लेकिन वो उसका एजेंट की रिपोर्ट होकर के उसकी आरटीपीसी रिपोर्ट चाहिएगी, उसके बाद क्लियर करके जब उसको अंदर जाने दिया जाएगा। तो ऐसा सरकार हर चारों तरफा चारों दिशाओं हर कदम को बहुत कर रही है।
तो सर जो ये शिक्षिका को क्यों जारी करना पड़ेगा, विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी विक्रम जी,
निधि जी ये संतोष का विषय है कि बराला जी ने बड़ी साफ गोई से सारे जवाब दिए बिना लाग लपेट के, लेकिन मेरा एक परामर्श होगा कि निर्वाचन एक बहुत व्यापक व्यवस्था है, एक कंटिजेंसी प्लान होता है कि अगर इस तरीके की घटना होती है तो हमारे एक रिजर्व से कैसे हम उसकी आपूर्ति कर लेते हैं। कंटिजेंसी माना कि बहुत बड़ी व्यवस्था है, लेकिन कंटिजेंसी प्लान के तहत इसकी आपूर्ति और अपूर्वा को वापस करके उसकी जगह किसी अन्य को लगाना चाहिए था, ये मेरा परामर्श होगा।
जी भराला जी, क्या जो चुनाव होता है चयन होता है जो टीचर्स का जाने के लिए, क्या उस पर कुछ और गौर किया जा सकता था?
देखिए मैं निधि जी आपको बताना चाहूंगा, हम बहुत लंबे से पिछले 30 वर्षों से हम चुनाव लड़वाते आ रहे हैं पार्टी को अपनी और संगठनों को।
कोरोना तो पहली बार आया सर।
नहीं कोरोना पहली बार आया है, लेकिन मैं उस कोरोना की बात बता रहा हूँ कि जो हमारे एडमिशन ऑफिसर है या फिर निर्वाचन अधिकारी है, वो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की हमने ड्यूटी लगाई है, हमने उसके अंतर बदले में चार चार अध्यापक अध्यापिका है, तो ऐसा कि कोई बीमार हो जाए तो उसको हटा करके दूसरा रखा जाए, तो इस बात का ध्यान रखा है अब हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कोई अपवाद निश्चित रूप से हुआ है कहीं ना कहीं, मैं इसको कह नहीं सकता हूँ, लेकिन सरकार ने बहुत अच्छा उस काम को रखा है और सरकार की निगाह जो है हर व्यक्ति पर है, हर नागरिक की जान को लेकर के है और हमारी सभी को हमारी जिम्मेदारी है।
ठीक है, आपने कह दिया कि ये अपवाद है, आपने कहा ये अपवाद है, ठीक है आपने कह दिया ये अपवाद है, ये बात भी ठीक है, सरकार अगर ये भी कह रही है अपवाद है, बस आप इस जो ये खबर जो आई है अपर्णा है इनके मामले को जरा ध्यान दे दें, क्योंकि इनके पति की भी रिपोर्ट अभी नहीं आई है और बच्चे भी अकेले घर में होंगे। बहरहाल सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि सरकार पूरा ध्यान रख रही है, आज ही जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई है कि 400 जिले हैं जिसमें पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, 265 है जिसमें 15% ज्यादा है, तो क्या कुछ प्लान है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने तो कह दिया ये राज्य सरकारों का काम है, आप कंटेनमेंट जोन लगाए बनाइए, उनको और स्ट्रिक्ट कर दीजिए, समारोह में वो कर दीजिए, लेकिन क्या कोई सुनेगा? क्योंकि आज ही बिहार से खबर आ रही थी, बिहार के बीजेपी के नेता, शायद उनके बेटे की शादी थी, और शादी में जो भव्य समारोह हो रहा था तमाम नियमों के बावजूद, तो वो सवाल खड़े करता है, क्या हमारे जो नेतागण हैं, जो सत्ता में लोग आसीन हैं, क्या वो इन नियमों को मानेंगे? क्या जो ये मैं दृश्य हम दिखा रहे हैं आपको कि ये बिहार से दृश्य आए, आप देख लीजिए, आपको लगता है कि हर राज्य में समारोह में लोगों में नियम जारी किए गए हैं, मास्क किसी के पास नजर नहीं आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि क्या है? तो सत्ता जो है, जो सत्ता में लोग आसीन हैं, क्या उनके लिए आसान है नियम तोड़ना? भराला जी,
देखिए ऐसा है निधि जी, नियम तोड़ने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं दी जाती है, और जहां इस शादी का दृश्य आपने दिखाया है, शादी एक ऐसा समारोह होता है, उस पर आप किसी प्रकार का दबाव ज्यादा नहीं बना सकते। आप कह सकते हैं हर व्यक्ति को अपने जान की चिंता है, ऐसा नहीं कि उनको भी चिंता नहीं है, उनको भी चिंता है, मास्क तो दिखाई दे रहे हैं वहां भी,
वो मैं देख रहा हूँ जो चित्र। कितने लोग शामिल होंगे भराला जी? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कह रही कि आप सख्त दिशा निर्देश दीजिए, नियम लागू करती है राज्य सरकार, फिर भी अनदेखी क्यों होती है? मतलब लोगों में डर ही नहीं है कोरोना का?
सर सर, कोरोना का डर है, लेकिन आप देखेंगे अगर निधि जी आप गांव में चली जाएंगी तो गांव में एक भी व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा है गांव के अंदर, और वे सुरक्षित भी है।
नेताओं को तो लोग देखते हैं ना।
देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ केवल इस पर कि सरकार जितना सख्ती कर सकती है उतना सख्ती कर रही है, लेकिन सरकार जनता के हित में ऐसा भी नहीं कर सकती कि उस पर लाठीचार्ज उसको जेल में ठूस दे।
लाठीचार्ज की तो बात है सर, अब आज देखिए चारधाम यात्रा को रोका गया है ना, कहा है कि सिर्फ पुजारी पूजा करेंगे, बिल्कुल ठीक निर्णय है ये, पुजारी मंदिर में पूजा कर लेंगे, चारधाम यात्रा नहीं करेंगे, हालांकि इससे उत्तराखंड को काफी नुकसान होगा आर्थिक तौर पर, लेकिन ये बहुत जरूरी कदम था।
चारधाम की यात्रा रोकना वो एक अपने आप में अच्छा निर्णय है, इसलिए कि पूरे भारत के लोग वहां आते हैं, चारधाम की यात्रा में केवल उत्तराखंड के लोग नहीं आते, तो उसको रोकना बहुत आवश्यक है क्योंकि पूरे भारत का लोग वहां आता है।
सर सत्ता में जो लोग हैं, सत्ता में जो लोग आसीन होते हैं, वही तो निर्णय ले सकते हैं, वही तो लागू करवा सकते हैं।
आपका ये कहना है कि सरकार अपने नियमों को उसको करने में कहीं भी किसी प्रकार का कहीं भी जरा सा भी इश्यू नहीं कर रही है। देखिए आप ऐसे चित्र लेकर आते हैं कि जहां ऐसा दिखाई दे कि सरकार बिल्कुल नागोरी है, ऐसा चित्र आप इस चित्र को दिखा रहे हैं निधि जी?
नहीं ऐसा तो कोई चित्र नहीं है, अभी हम देखिए, हम ये चुनावों के पंचायत चुनावों के दृश्य दिखा रहे हैं, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है भराला जी, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है वो अच्छी बात है।
लोग शादी कर रहे हैं, मैं भी एक दो शादी में मेरा जाना हुआ है, तो लोग बहुत उत्सुक कर रहे हैं। व्यक्ति इस बार मैं एक निधि जी आपको और बताना चाहूंगा कि इस बार एक अलग बात है, पहले तो लॉकडाउन सरकार ने लगाया था, नहीं है आज लोग अपने आप अपने घरों में लॉकडाउन लगा करके बैठे हुए हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, मेरठ के बाजारों की स्थिति आप अपने
बिल्कुल भराला जी, अंत में मैं विक्रम जी आप ही के पास आऊंगी, और कि जो सत्ता में जो हमारे नेता होते हैं, अब ये अच्छा है कि हम जिला स्तर पर भी आज गृह मंत्रालय ने निर्देश दे दिए कि राज्य सरकारें कदम उठाएं, लेकिन जो हमारे नेता करेंगे लोग तो उसी को पालन करेंगे ना, चाहे चुनाव हो चाहे कुछ समारोह, हम शादियां देख रहे हैं, हम देख रहे थे किस तरह से, अंत में क्या संदेश देंगे आप?
निधि जी बड़ी माकूल बात आपने फरमाई है, जो नेता करते हैं जनता उसका अनुकरण करती है, उनको और ज्यादा नियमों का पालन करना चाहिए, और रूल बुक में कहीं अपवाद का कोई गुंजाइश नहीं है कि शादी का अपवाद, बीजेपी के अध्यक्ष का अपवाद, किसी तरह का अगर अपवाद का चोर दरवाजा हमने खोला तो हम मुसीबत को दावतनामा पेश कर रहे हैं, यमराज को दावत दे रहे हैं। कान खोल के सब लोग सुने, अपने हित के लिए ये जरूरी है कि जो गाइडलाइंस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, ये होना चाहिए, 50 से ऊपर गेस्ट नहीं, कर्फ्यू का पालन होना चाहिए अपवाद के बिना।
बिल्कुल, और जिला स्तर पर भी ये बात जानी चाहिए और वहां पे जो लोग जनमानस है उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, उनका ध्यान रखना है। बहरहाल चर्चा में अभी के लिए इतना ही, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम आपको हमारे सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश से यहां पर किस तरह से चुनावी ड्यूटी के दौरान 135 शिक्षकों की मौत हुई है। ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक संघ ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान 135 शिक्षकों की कोरोना से मौत हो गई। उनकी चुनाव टालने की मांग तो सरकार ने नहीं मानी है, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर राज्य चुनाव आयोग से जवाब तलब कर लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस पर ट्वीट कर नाराजगी जताई।
शाहजहांपुर की एक पोलिंग पे कोविड के लक्षणों वाली बीमार टीचर अपर्णा जमीन पे पड़ी तड़प रही हैं। जब उन्होंने अपनी वीडियो और ऑडियो वायरल की तब उन्हें ड्यूटी से हटाया गया।
मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मुझे यहाँ पे किसी भी तरह की चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरे परिवार में भी मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, उनका मैंने कल कोरोना टेस्ट कराया है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है, बच्चे मेरे घर में अकेले, पति भी अकेले।
सीतापुर के टीचर अभिषेक माँ बाप के अकेले बेटे थे, बेटा चला गया, अब उनके पास बस उसकी तस्वीर बची है। उनके घर वालों का कहना है कि पंचायत चुनाव के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे, एक रोज आए तो तेज बुखार था, फिर गुजर गए।
वो जो है वहाँ प्रशिक्षण देने गया था पसेंडी में, वहाँ से वहीं पे उसको फीवर आया और जो है उस आके घर में एकदम से वो पड़ गया। कोविड का जो है उसने चेकिंग कराया तो 4 दिन बाद रिपोर्ट आई, इतने में मेरा बच्चा बिल्कुल बेकार हो गया।
सहारनपुर की टीचर सीमा कुछ यूं दिखती थी, फिर इस हाल में पहुंच गई, फिर नहीं रही। उनके घर वाले कहते हैं कि उन्हें बुखार के बावजूद 15 तारीख के चुनाव में रिजर्व में रख के ड्यूटी पे बुलाया गया, जहां उनकी हालत और बिगड़ गई। 17 को कोविड टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आई, 26 को गुजर गई।
मैंने उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट करी कि भाई इनकी तबीयत ठीक नहीं है और इनको मेडिकल पहले फैसिलिटी या मेडिकल क्या कहते हैं इनका एग्जामिनेशन कराया जाए, उसके बाद ही इनको क्या कहते हैं ड्यूटी दी जाए, बट उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी। मैं 10-15 बार उनके पास रिक्वेस्ट करता रहा।
कई शिक्षक संगठनों ने सीएम से पंचायत चुनाव टालने की मांग की थी, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। एक शिक्षक संघ ने चुनाव ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षकों की कोरोना से मौत का आरोप लगाया। उनकी मांग है कि ऐसे शिक्षकों के परिवार को 50 लाख मुआवजा मिले, संक्रमित शिक्षकों का मुफ्त कोरोना का इलाज हो, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए।
लगभग 135 शिक्षकों की सूची हमने दी है, लेकिन आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी इसमें कालकवलित हुए हैं, तो हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कार्रवाई करें।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट पे चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर लिखा है कि यूपी पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे लगभग 500 शिक्षकों की मृत्यु की खबर दुखद और डरावनी है। चुनाव ड्यूटी करने वालों की सुरक्षा का प्रबंध लचर था तो उनको क्यों भेजा गया, उन्हें 50 लाख की मदद और आश्रित को नौकरी मिले।
एक ऐसे वक्त में जब कोरोना इतनी जाने ले रहा है, इतने बड़े पैमाने पर पंचायत चुनाव कराना जाहिर है कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, पीठासीन अधिकारियों की जिंदगी के साथ भी और मतदाताओं की जिंदगी के साथ भी। अंकित, अशोक, समीर और अनुराग के साथ लखनऊ से कमाल खान, NDTV इंडिया।